हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। यूं ही कुछ दिन गुजर गए थे। धृति कोशिश करती थी खुद को सामान्य दिखाने की, पर निहारिका की मौजूदगी उसकी उदासी और तकलीफ की वजह बनी हुई थी। जब वो घर वालों के साथ होती तो सबका ध्यान उसी पर रहता था और धृति खुद को निग्लेक्टेड और अनवांटेड फील करने लगती। हालांकि सबका व्यवहार उसके साथ पहले जैसा ही था, फिर भी एक कमी सी लगती थी। माधुरी भी इन दिनों काफी बिजी थी। दिवाली आने वाली थी, उसके बाद कुछ छुट्टियां मिलनी थी और उससे पहले कुछ काम निपटाने थे जिनमें अर्णव भी व्यस्त रहता। बचे हुए वक्त निहारिका उसके आसपास रहती। धृति जो पहले से उससे कटी कटी सी रहती थी, अब और दूर रहने लगी थी और ये दूरियां अर्णव को बेचैन कर रही थीं। धृति से उसने कई बार बात करने की कोशिश की थी, पर धृति कुछ बोलने को ही तैयार नहीं थी। धृति पहले जैसे अब भी एक अच्छी बीवी और बहू होने के सभी फर्ज निभाती थी, बस कुछ उदास उदास और गुमसुम सी रहती थी। माधुरी ने उससे वजह पूछनी चाही, पर जब वजह से वो खुद अनजान थी तो उसे क्या बताती। और ये उससे कहते नहीं बन रहा था कि निहारिका का अर्णव के पास होना, इस घर में होना उसे इफेक्ट कर रहा था। इन दिनों खुद में ही उलझी रहती। अजीब अजीब से ख्याल मन में आते और फिर अलग अलग बहाने बनाकर खुद को बहलाने लगती। शाम का वक्त था। धृति रोज की तरह किचन में थी और डिनर की तैयारी कर रही थी, तभी निहारिका ने वहां कदम रखा। धृति ने एक नज़र उसे देखा, फिर वापस अपने काम में लग गई। वहीं निहारिका मुस्कुराते हुए उसके पास चली आई। धृति, इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए, पर कभी तुमसे ठीक से बात ही नहीं हुई। धृति ने उसकी बात सुनकर अजीब सा मुंह बनाया और मन ही मन बुदबुदाई। अर्णव जी से गम की तरह चिपकी रहती हो, कोई और नजर आए तब तो बात करोगी। धृति जो उससे काफी चिड़ी हुई थी, अपने मन की भड़ास भी मन में ही निकालने के बाद उसने अपने काम में लगे हुए ही सवाल किया, आपको मुझसे क्या बात करनी है? बस ऐसे ही यहाँ वहाँ की कुछ बातें, थोड़ा हंसी मजाक, पर तुम हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहती हो इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाती। इसके बाद निहारिका ने पल भर ठहरने के बाद आगे कहना शुरू किया, वैसे धृति एक बात कहूँ बुरा मत मानना। कहिए, धृति ने बेमन से ही जवाब दिया, जबकि दिल तो कर रहा था कि बाल पकड़कर उसे यहाँ से बाहर निकाल दे और कहे कि दोबारा उसके सामने आकर मुंह ना खोले वरना बोलने लायक नहीं छोड़ेगी, पर अपनी उग्र भावनाओं को अंदर ही दबा गई। जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना, तो कहीं से भी मुझे लगता ही नहीं कि तुम अर्णव की वाइफ हो। जिस तरह से तुम कामों में लगी रहती हो, लगता है जैसे घर में काम करने वाली सर्वेंट हो या शीला के जैसे केयरटेकर हो। जैसे वो इस परिवार की जरूरतों और कामों का ध्यान रखती है, तुम भी वही करती हो। मैंने तुम्हें कभी अर्णव की फैमिली के साथ बैठकर ठीक से बात करते नहीं देखा। अर्णव और तुम्हें कभी साथ नहीं देखा। तुम दोनों में से वो कपल्स वाली वाइब्स ही नहीं आती और ना ही तुम अर्णव के काबिल लगती हो। तुमसे ज्यादा वक्त तो वो मेरे साथ बिताता है, हमारी कितनी बातें होती हैं, जबकि तुम दोनों कभी दो पल शायद साथ बैठकर दो चार बातें भी नहीं करते होगे। मेरे साथ अर्णव कितना फ्री और खुश रहता है, जबकि जब तुम दोनों आसपास होते हो तो अजीब सी टेंशन से घिर जाता है। तुम दोनों की तो लव मैरिज थी, पर तुम दोनों के बीच लव का लव ही नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती का रिश्ता है जिसका बोझ तुम दोनों ढो रहे हो, जिसमें ना तो अर्णव खुश है और ना ही तुम। आई गेस अर्णव के लिए मैं तुमसे बेहतर चॉइस थी। अगर तुम हमारे बीच नहीं आई होती तो आज अर्णव मेरे साथ होता, हमारी शादी होती और वो मेरे साथ खुश रहता। उसकी और मेरी तो फैमिली भी इसके लिए तैयार थी। देखा तो होगा ही तुमने कि यहाँ सब मुझे कितना चाहते हैं और अर्णव के कितने करीब हूँ मैं। तुम बेकार ही हमारे बीच आ गई, जबकि ना तो तुम्हारी कोई क्लास है और स्टेटस, तुम्हारी तो फैमिली तक का पता नहीं। तुम इस काबिल ही नहीं कि अर्णव की वाइफ बन सको। वो जगह मेरी है, मैं हर तरह से उसके काबिल हूँ और आज नहीं तो कल उसे आना मेरे ही पास है। बचपन का साथ है हमारा, ना तो उससे ज्यादा कोई समझ सकता है और ना ही खुश रह सकता है। इसलिए तुम अपनी मर्जी से जितनी जल्दी अर्णव से दूर जाकर मेरा रास्ता साफ कर दोगी, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। जितनी देर लगाओगी उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुम्हें। बस फ्रेंड के नाते मैंने तुम्हें एडवाइस दी है, आगे तुम्हारी मर्जी। इसे कहते हैं शहद में घोलकर जहर पिलाना। मीठी जुबान से ऐसे तीखे तीर छोड़े उसने कि धृति की पलकें भीग गईं। अपने निचले लब को दांतों तले दबाब वो खुद को जब्त किए खड़ी रही। निहारिका के आखिरी के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। उसके चुप होने पर धृति ने खुद को संभाला, अपनी हथेलियों से अपने आंसुओं को पूंछा, फिर उसकी ओर पलटकर हौले से मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स फॉर द एडवाइस्ड, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और आपको मुझसे इनसिक्योर होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मिस्टर सिंह के लिए कितनी सूटेबल हैं और वो आपके साथ कितने खुश रहेंगे ये तो मैं नहीं बता सकती, पर यकीनन मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ। जानती हूँ कि मैं उनके काबिल नहीं और मैं कभी उनकी ज़िंदगी में आना भी नहीं चाहती थी। मैं अगर आज यहाँ खड़ी हूँ तो ये मेरी मजबूरी है और बहुत जल्द मैं इस घर और उनकी ज़िंदगी से जाने वाली हूँ, उसके बाद वो भी आपके और ये घर परिवार भी आपका। धृति का जवाब सुनकर निहारिका बुरी तरह से चौंक गई और फटी आँखों से उसे देखते हुए हैरानगी से बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि मैं अपनी मर्जी से आप दोनों के बीच नहीं आई हूँ, मुझे बीच में लाया गया है। पर आप चिंता मत कीजिए, अभी आपने ही कहा ना कि जितनी देर लगेगी मुझे उतनी ही तकलीफ़ होगी, तो मैं बहुत जल्द इस तकलीफ़ से छुटकारा पाने वाली हूँ। वजह तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये मिस्टर सिंह और मेरे बीच की बात है, पर आपकी तसल्ली के लिए इतना बता देती हूँ कि बहुत जल्द मैं आप दोनों के बीच से चली जाऊँगी। अब अगर आपको जो कहना था वो कह लिया हो तो यहाँ से जा सकती है। धृति ने सीधे तौर पर ना सही पर उसे जता दिया था कि अब वो चली जाए क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे। धृति की बातों में उलझी निहारिका बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। धृति ने गहरी सांस अपने फेफड़ों में भरी और वापस अपने काम में लग गई। प्रभात, मिस्टर सिंह, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कई दिनों बाद आज धृति ने सामने से अर्णव से बात करने की पहल की थी। रात का वक्त था और इस वक्त दोनों कमरे में बैठे थे। धृति पलंग पर बैठी काफी देर से बात शुरू करने की कोशिश कर रही थी जबकि अर्णव काउच पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। धृति की आवाज़ सुनकर उसने चौंकते हुए निगाहें उठाकर उसे देखा। धृति के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर उसने भी गंभीर स्वर में कहा, कहो, मैं सुन रहा हूँ। टू बी कंटिन्यूड।